वहाँ किगिंज तुर्कमान जैसी 50 भाषाओं को उच्चारण अनुसार लिपि दी गई। उन भाषाओं में पुस्तकें लिखवाई गईं, साहित्य तैयार किया गया, प्रकाशन चला। चंद ही वर्षों बाद उन्हीं भाषाओं द्वारा अध्ययन कर हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, कृषि विशेषज्ञ, भूगर्भवेत्ता और साहित्यकार निकल आए, जिन्होंने देश की काया पलट दी और सदियों पिछड़ी अपनी जाति को अत्याधुनिक मानव समाज की अगली कतार में ला खड़ा किया। हमारे देश में भी वैसी ही विकट समस्याएं स्वतंत्रता देवी के आगमन के साथ आ उपस्थित हुई हैं। आज हर साल 11 करोड़ 80 लाख मन अन्न का तोड़ा है, जिसे हम बाहर के देशों से मांग कर पूरा कर रहे हैं। कब तक हम हर साल अरब से अधिक रुपया यूं बाहर भेजते रहेंगे, और भेजना चाहें भी तो कब तक हम ऐसे करने की क्षमता रखेंगे? फिर 11 करोड़ 80 लाख मन से काम थोड़े ही चलने का। हर साल हमारी जनसंख्या 50 लाख के हिसाब से बढ़ती जा रही है, जिसका अर्थ होता है कि 4.5 करोड़ मन गल्ला हर साल ज़्यादा बाहर से मंगाना। हम बिल्कुल खतरे में हैं, पानी नाक के नज़दीक पहुंच रहा है। अगर हमने इसका रास्ता चंद वर्षों में नहीं निकाला तो परिणाम भयंकर होगा। बंगाल ने जो 50 लाख भूमि के लिए बलिदान दिए, उनका कोई कई गुना ज़्यादा भारत को देना पड़ेगा। कृषि उपयोगी सारी भूमि को खेतों में परिणित करना, उपज बढ़ाने के लिए खाद तथा सिंचाई का बड़े विशाल पैमाने पर इंतजाम करना और खेती के साइंस का उपयोग करके आज की उपज को बढ़ाना, यह सब हमें तत्काल करना पड़ेगा। स्मरण रहे, हमारे धान और गेहूं के खेत आगे बढ़े देश की अपेक्षा सिर्फ 5वां या 6ठा हिस्सा ही फसल पैदा कर रहे हैं। लेकिन यह सब करके हम अपनी जनता को सिर्फ भूख से बचा सकते हैं, उसके जीवन के मान, उसकी वार्षिक आय को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राष्ट्र के योग नहीं बना सकते। यह काम तो हम तभी हो सकता है जब देश का बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण हो, भूमि के अंदर दबी अपार खनिज संपत्ति और नदियों में बही जा रही अनंत विद्युत शक्ति को करोड़ों हाथों और मस्तिष्क की सहायता से काम में लाया जाए। किंतु वैज्ञानिक खेती और देश का बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण तभी हो सकता है जबकि साइंस और शिक्षा आम और सार्वजनिक हो जाए। सोवियत की काया पलट हुई, उसमें सबसे अधिक उसके 10 लाख इंजीनियरों का हाथ है। हमें उससे भी ज़्यादा इंजीनियर की ज़रूरत है। सारी जनता को शिक्षित करना हमारे लिए कोई शौकीनी की बात नहीं, यह तो हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। इसे हम यदि 10-15 वर्षों में पूरा करना चाहते हैं तो मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाएं, बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं। अपरिचित भाषा सिखलाकर ज्ञान देने की शर्त हमें हरगिज नहीं पेश करनी चाहिए। जनता को बोलियों को उच्चारण अनुसार लिपि दीजिए और सीधे जन बोलियों में वैज्ञानिक और दूसरे साहित्य को तैयार कीजिए। इनके लिए सर्वथा उपयुक्त लिपि नागरी हमारे पास है। आखिर कौन सी बुद्धिमानी है कि मैथिली, अवधी, भोजपुरी और ब्रजभाषा जैसी जन बोलियों को शिक्षा का माध्यम बनने से रोका जाए? अनेक भाषाओं को दबाकर भिन्न भिन्न भाषियों को एक जुए के नीचे जोतना सामंतशाही आदर्श भले ही हो सकता है, लेकिन जनता के राज्य के दम भरने वाले कैसे उसे अपनाने पर जोर दे सकते हैं? पृष्ठ संख्या 89। खासकर आज की परिस्थिति में, जबकि जनता की आम शिक्षा रोटी कपड़े के सवाल को हल करने में अनिवार्य शर्त बन गई है, हमारे राष्ट्रीय कर्णधार इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। अभी वे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और मराठी भाषी प्रांतों को भी स्वतंत्र प्रांत मानने में आनाकानी कर रहे हैं। फिर बिहार, युगान तक मध्य प्रांत और पूर्वी पंजाब को मातृभाषाओं के अनुसार बांटने के लिए कोई सूच का कदम वे उठाएंगे, इसकी आज तो आशा नहीं मालूम हो रही। मुश्किल तो यह है कि वे इसे अनुभव नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करके वे मातृभाषाओं का कोई उपकार नहीं करेंगे। देश को दरिद्रता के गर्त से निकालकर समृद्ध बनाने के लिए मातृभाषाओं का उतना ही आवश्यकता है जितनी कि भारत के करोड़ों हाथों और मस्तिष्क की। यह बात हम जितना ही शीघ्र समझ लें उतना ही देश का कल्याण है। 6-6 करोड़ और 3-3 करोड़ की जनता के मंत्री और गवर्नर बने रहने की अहम मान्यता एवं लोभ की पूर्ति कुछ व्यक्तियों के लिए भले ही संभव हो, किंतु इससे हमारी नैया भंवर से नहीं निकल सकती। 11,80,00,000 मन अनाज का सालाना घाटा, ऊपर से 4,50,00,000 मन घाटे का हर साल और बढ़ते जाना, 50,00,000 हर साल नए मुंह का बढ़ना, और देश का आज भी दुनिया में सबसे दरिद्र देशों में होना, ये बातें जिन पर आज हर समझदार भारतीय को गौर करना और हल ढूंढना है। इसीलिए मातृभाषाओं के अनुसार प्रांतों का फिर से विभाजन आज की अनिवार्य आवश्यकता है। अगर आधुनिक विशाल प्रांतों के गद्दीधर इतना नहीं करना चाहते, तो कम से कम कमिश्नरियों को हटाकर एक मातृभाषा के अनुसार एक एक उपप्रांत ही बना दें। हाँ, वहाँ मातृभाषा को ही शिक्षा और कचहरियों का माध्यम बनाना होगा। मातृभाषा अनुसारी प्रांतों से हिंदी को कोई हानि नहीं, वह संपूर्ण भारत संघ की अनिवार्य राष्ट्रभाषा रहेगी। अंग्रेजी को और कितनी ही शताब्दियों तक भारतीय संघ की भाषा बनाए रखने का मंसूबा बांधने वाले वही हो सकता है जो सोचने को सारी शक्ति खो चुके हैं। जिस तरह सोवियत संघ ने देश में तीसरे दर्जे अर्थात 10वें साल की आयु से संघ की भाषा अर्थात रूसी का पठन पाठन अनिवार्य कर दिया, वैसे ही मैं अपने यहाँ हिंदी को अनिवार्य कर देना है। इसका विरोध करने वाले संघद्रोही होने के लांछन से बच नहीं सकते। सारे भारत संघ की भाषा हिंदी नहीं हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जो हिंदी और अरबी दोनों लिपियों में लिखे जाए। यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता नहीं राष्ट्रीयता के नाम पर। हमें सोचना है कि कहाँ तक यह व्यवहार और राष्ट्रीयता सम्मत है। पहले ही हमें साफ समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तानी कहने से एक भाषा का मान जो कराया जाता है वह बिल्कुल गलत है। वस्तुतः वहाँ उर्दू हिंदी इन दो भाषाओं को एक शब्द की आड़ में लाया जाता है। हिंदी उर्दू चाहे उनका उद्गम शताब्दियों पहले एक रहा हो और आज भी, यदि अरबी के लदे बोझ से हटा दिया जाए तो वह एक है, लेकिन इधर तो वे विकसित होकर दो स्वतंत्र भाषाओं में परिणित हो गई हैं।